لیکن اپنے سننے والوں سے
مہمان ہمارے ساتھ ہیں.
ہمارا آج کا مزاق
معمول خبروں سے
آپ کے ساتھ ہے.
آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے
میں. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. اور وہ تین لوگ جن کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا وہ عبید اللہ بیگ، قریش پور اور افتخار عارف تھے، جو پی ٹی وی کے ایک مقبول ترین پروگرام کسوٹی کے تخلیق کار اور میزبان تھے. وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. دلچسپ معلومات اور کہانیوں، ماضی کی یادوں اور نت نئے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنے فون کی آئی ٹیونز، گوگل پوڈ کاسٹ یا اسپوٹیفائی پر وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ سبسکرائب کیجیے. چکلالہ کی بیرکوں میں بنی پاکستان ٹیلی ویژن راولپنڈی کی عمارت میں جنرل مینیجر کے کمرے کے سامنے لمبی راہداری میں اسٹاف یونین، کارکنوں اور کچھ افسران کا احتجاجی اجتماع تھا، جو انتظامیہ کے خلاف نعرے لگا رہا تھا، فیصلے کو واپس لو، فیصلے کو واپس لو. یہ شور تھا. کچھ یہی صورتحال دوسرے اسٹیشنز پر بھی تھی. فیصلہ یہ تھا کہ تین نئے ملازمین کو براہ راست گروپ 7 کے افسران میں شامل کیا گیا تھا، جبکہ افسران کا گریڈ گروپ 5 سے شروع ہوتا تھا. یہ قوانین کی صریح خلاف ورزی تھی اور بہت سے ملازمین اس کے خلاف سراپا احتجاج تھے. شور و غل جاری تھا کہ جی ایم کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھورے رنگ کی کھدر کی بو شرٹ اور اسی رنگ کی پتلون، ساتھ میں پشاوری چپل پہنے ایک روبدار شخصیت نمودار ہوئی. انہوں نے ایک تائرانہ نگاہ مجمع پر ڈالی جس پر اب خاموشی تاری تھی. یہ تھے پی ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اسلم اظہر. چند لمحے کے سکوت کے بعد وہ اپنی بھاری بھرکم گرجدار آواز میں گویا ہوئے. میں آپ کے جذبات اور احساسات کی قدر کرتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ یہ عام روش سے ہٹ کر کیا گیا غیر معمولی فیصلہ ہے. میں قوانین اور اپنے اختیارات کو بھی جانتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ انہیں ایک اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے، لیکن آپ کو احتجاج سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کن لوگوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ عام افراد نہیں ہیں. ہم نے تو ان کا بہت کم مول لگایا ہے. یہ ملک کے اعلی ترین دماغ ہیں، چند بہترین دانشوروں میں سے ہیں. میرے بس میں ہو تو میں انہیں ہیرے جواہرات میں تول دوں. اپنا دل بڑا کیجیے اور انہیں خوش دلی سے قبول کیجیے اور فخر کیجیے کہ وہ آپ کے ساتھی بن رہے ہیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا حق بھی نہیں مارا جائے گا. یہ فیصلہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اور ہم اس پر قائم ہیں. یہ کہہ کر اسلم صاحب اندر چلے گئے. مجمع پر سکوت طاری تھا. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، شرمندگی چہروں پر آیا تھی. خاموشی سے سب تتر بتر ہو گئے اور احتجاج ختم ہو گیا. ایسا جامع اور جرأت مندانہ خطاب اسلم اظہری کر سکتے تھے، جو پی ٹی وی کے بانی، بھٹو کے ایک دیرینہ ساتھی اور کیمبرج یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری یافتہ تھے. بہت کم لوگ ان کے سامنے بولنے کی ہمت رکھتے تھے. اور وہ تین ہیرے جن کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا تھا، وہ عبید اللہ بیگ، قریش پور اور افتخار عارف تھے، جو پی ٹی وی کے ایک مقبول ترین پروگرام کسوٹی کے تخلیق کار اور میزبان تھے. لاکھوں ناظرین کی طرح ہم بھی ہر ہفتے یہ پروگرام بڑے شوق اور توجہ سے دیکھتے تھے، اور ان تینوں کے علم و دانش، دماغ और याददाश्त के गर्विदा हो जाते थे। कभी गुमान में भी ना था कि हमारे नसीब कभी इतने बुलंद होंगे कि खुदा इनमें से एक हीरे को हमारे इतने करीब ले आएगा कि हम एक दूसरे के शादियों में भी शरीक होंगे और एक दूसरे के बच्चों से भी खेलेंगे और दुख सुख के साथी होंगे। हमें जिनसे कुर्बत नसीब हुई वो हीरा था, पाकिस्तान का इंसाइक्लोपीडिया, पाकिस्तान का पहला गूगल दिमाग, उबैदुल्ला बेग। बस खुदा का करना क्या हुआ कि तकरीर के फौरन बाद बेग साहब को इस्लामाबाद रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और वो खसूसी प्रोजेक्ट और अहम दस्तावेजी फिल्में बनाने पर मामूर हुए। इन दस्तावेजी फिल्मों की पसे पर्दा आवाज के लिए कभी कभी उन्हें हमारी जरूरत पड़ती और यूं हमारा उनसे रابطہ शुरू हुआ। उनकी दिलावेज शख्सियत और भी निखर कर सामने आ गई। वह इंतहाई सादा मिजाज, मोहब्बत करने वाले, मिलनसार और हंसमुख इंसान थे। वो कभी अपनी शख्सियत या इल्मियत का रोब दूसरों पर नहीं डालते थे। गुरूर और तकबुर का शायबा तक नहीं था और यही वस्फ उनकी अजमत की दलील था। वो हर शख्स को अपना गिरविदा बना लेते थे, तो हम भी उनके परस्तार हो गए। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब भी मैं उन्हें देखता तो सोचता क्या क्या उनसे अपने मामू मुस्तफा राही बेग का जिक्र करूं, जो अक्सर कहते थे कि उबैद हमारे पुराने दोस्त हैं, मुरादाबाद के जमाने के। लेकिन मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता कि हर बड़े और मशहूर आदमी के साथ लोग यूं ही रिश्ते जोड़ लेते हैं। मगर वो हर बार मुझसे जरूर पूछते कि भाई तुमने उबैद मियां से हमारा जिक्र किया, किसी दिन ले आओ उन्हें घर पर। वो बड़े एतमाद और खुलूस से कहते, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इतने बड़े स्टार से ऐसी फरमाइश करूं। उन्हें शायद याद भी नहीं होगा कि और पहचानने से इनकार कर दें तो अपने मामूजान को क्या जवाब दूंगा और उनकी खामोखा सुब की होगी। बहरहाल इसी कशमकश में काफी अरसा बीत गया। एक मरतबा बेग साहब ने फिर मुझे बुलाया और पढ़ने को एक स्क्रिप्ट दिया। मैं जब फारिग हुआ तो मैंने स्क्रिप्ट पर अपना नाम लिखा, खालिद हमीद बेग। तो वो चौंक पड़े, अरे तुम बेग हो? इससे पहले मैं ज्यादातर सिर्फ खालिद हमीद ही तहरीर करता था, तो इस इंकशाफ पर बड़े खुश और मुतजस्सिस हुए और फिर मेरे खानदान की तमाम तफसीलात पूछ डाली। जैसा कि सब जानते हैं, वो तारीख और खास तौर पर मुगलिया तारीख पर उबूर रखते थे, तो उन्होंने हमारे आबाओ अजदाद का शजरा हमारे सामने खोल कर रख दिया, जिसका हमें खुद भी इल्म न था। बस यही वो लम्हा था जब हमने हिम्मत करके जिक्र किया कि मुरादाबाद इंडिया में आपके साथ कोई मुस्तफा राही बेग थे बचपन में। ये सुनकर तो वो उछल पड़े कि अरे तुमने कैसे जानते हो? मैं तो उन्हें बहुत अरसे कराची और सब जगह तलाश करता रहा हूं। मैंने उन्हें बताया कि वो मेरी अम्मी की फर्स्ट कजिन और मेरे मामू हैं और वो यहीं रहते हैं। ये सुनकर वो अपनी निशस्त से खड़े हो गए और कहने लगे, अभी ले चलो मुझे मुस्तफा भाई के पास। मैं हूं खालिद हमीद और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट। अब मुझे ये दिक्कत दरपेश थी कि वहां मामू के घर फोन नहीं था। मैं अचानक इतनी बड़ी शख्सियत को वहां बगैर इत्तला के कैसे ले जाऊं? तो मैंने आइंदा के वादे पर हामी भर ली। कहने लगे, पहली फुर्सत में तुम हमें उनसे मिलवाओ, और हां शर्त यह है कि भाभी से कहना कि किसी किस्म का तकल्लुफ न करें, बस वो माश की सफेद दाल और उसके साथ कोफ्ते बना दें, ये खाना वो यकीनन बहुत अच्छा बनाती होंगी। अब मैंने जाकर मामू मुमानी को इत्तला दी। वो सारा घराना तो शाद हो गया और वक्त तय हो गया। जब हम वक्त मुकर्रा पर पहुंचे तो ये मंजर दीदनी था। दो बचपन के साथी, बिछड़े हुए भाई ऐसे मिले कि सब अश्क पार थे। असल में मुरादाबाद इंडिया में एक मारूफ चहीती शख्सियत थी, चांदनी दादी। जो कम उम्री में ही बेवा हो गई थीं। लेकिन वो खानदान की ऐसी मकबूल शख्सियत थीं कि सारे बच्चे उनके गिर्द जमा रहते और वो आला तरबियत करती थीं। यूं समझिए कि वो कराची टीवी ड्रामों के एक मशहूर किरदार अक्का बुआ की तरह थीं, जिनके सब गिरविदा थे। उन्हीं चांदनी दादी की गोद में पलने वाले दो होनहार बच्चे मुस्तफा राही और उबैदुल्ला बेग भी थे, और शायद इसी तरबियत का नतीजा था कि दोनों के मिजाज, अंदाज और तबीयत में हद दर्जा मुमासलत थी। अलबत्ता ये जरूर था कि राही साहब एक गोशा नशीन, दरवेश सिफत और कम गोश शख्स थे, जो अपनी किताबों की दुनिया और शेर व शायरी में गुम रहे थे। वो जिगर मुरादाबादी के एक चहीते शागिर्द और उनके आशिकों में से थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई किताबें उन पर लिखी। ये ऐसे तहकीकी मकाले हैं जिन्हें यहाँ वॉशिंगटन की मशहूर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में रेफरेंस के लिए रखा गया है। उनके मुकाबले में बेग साहब एक मशहूर और मकबूल मजलिसी शख्सियत थे। अब जब दोनों का बरसों बाद मिलाप हुआ तो वो अपने माजी में ऐसा खोए कि घंटों की खबर ना होती, और मेरी ये जिम्मेदारी बन गई कि मैं अक्सर इस मुलाकात का एहतमाम करवाता। मंजर ये होता कि दोनों भाई अक्सर खामोश बैठे सिगरेट का कश लेते रहते और बचपन की यादों में खोए रहते। भाभी गाहे बगाहे ताजा चाय से उनकी तवाज़ो करती रहती। बेग साहब जब घर वगैरह लेकर रावलपिंडी में बाकायदा रिहाइश पजीर हुए तो फिर घर बसाने की फिक्र हुई कि अकेले कैसे रहेंगे। जिंदगी की साथी के लिए उनकी नजर इंतखाब सलमा असर पर पड़ी, जो मारूफ दानिश्वर और प्रोफेसर जीएम असर की सबसे छोटी साहबजादी और टीवी की एक बहुत मकबूल अनाउंसर थी। एक इंतहाई शोख, चंचल, खुशपाश सलमा पीटीवी चकलाला की एक मकबूल शख्सियत थी, जो हर जगह चहकती फिरती और कहकहे बखेरती रहती थी। उनकी दो बड़ी बहनों में से एक टीवी ही की एक मारूफ कैमरामैन नसीर मलिक और दूसरी मशहूर मेजबान अक्सी मुफ्ती से ब्याही हुई थी, इसलिए भी सलमा को सब टीवी के खानदान का ही समझते और प्यार करते थे। जब बेग साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो टीवी में हलचल सी मच गई। कहां एक लाउबाली सी नौजवान लड़की और कहां एक संजीदा बुर्दबार शख्स। मगर बेग साहब का कहना था कि मुझ जैसे खामोश और संजीदा आदमी की जिंदगी में ऐसी ही चंचल लड़की की जरूरत है। शादी इंतहाई सादगी से अंजाम पाई, और चूंकि बेग साहब के तमाम अजीज कराची में थे और फौरी तौर पर आ नहीं सकते थे, इसलिए टीवी के अफसरान और दोस्तों के अलावा हम और हमारे मामू के घर वाले बारातियों में शामिल थे। वहीं बेग साहब ने अपनी भाभी और मेरी मुमानी से फरमाइश कर दी कि कल माश की दाल और कोफ्ते बनाइए, हम वलीमा आपके घर करेंगे। और यूं वो नई दुल्हन को लेकर भाई के घर आ गए और सलमा को कह दिया कि यह तुम्हारा दूसरा घर है। यह सिर्फ लफ्जी इजहार नहीं था, बल्कि बाद में दोनों ने यह रिश्ता निभाया भी। जैसा कि बेग साहब का ख्याल था, सलमा उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर आई। दोनों में मोहब्बत, प्यार, हंसी मजाक बेमिसाली था। यह बिल्कुल भी एक रिवायती जोड़ा नहीं था, और अल्लाह का उन पर ऐसा इनाम हुआ कि तीन प्यारी प्यारी बेटियां उन्हें अता हुई, जिनसे उनका घराना एक मुकम्मल जन्नत बन गया, जहां हर वक्त कहकहे गूंजते रहते थे। बेग साहब घर आते तो यह मामूल था कि उनकी तीनों शहजादियां छुप जाती और वो उन्हें बारी बारी ढूंढते, प्यार करते। छोटी ऐना उनके कांधों पर चढ़ जाती और मरियम और फातिमा उनकी गोद पर कब्जा कर लेती। बसद इसरार वो बेटियों से इजाजत लेते कि वो कपड़े तब्दील कर लें। मेहमानों के लिए उनका घर एक तफरी का था, जो अपने सारे गम भूल जाता था। और सलमा कहती थी कि मेरा मियाँ तो मेहमान के आगे लेट जाता है कि खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा, और फिर जो दाल रोटी होती सामने रख दिया जाता। और फिर हमारी शादी में शिरकत के वक्त उनकी खुशी और ज़ौक़ो शौक़ देखने से ताल्लुक रखता था। वो बेइंतहा खुश थे कि मैं उनकी भतीजी, उनके भाइयों जैसे प्यारे दोस्त, मुस्तफ़ा राही की सबसे छोटी बेटी मुनज़्ज़म बेगम मोना से शादी कर रहा हूँ, जो उन्हें भी बहुत अजीज थी। बेग साहब का घराना शादी में ऐसे शरीक हुआ कि सलमा मोना को दुल्हन बनाने से लेकर उनके जोड़े टाँकने तक हर काम में शामिल रहीं। बच्चियाँ मेहंदी लगाने और ढोलक पर गीत गाने में मसरूफ थीं और बेग साहब दुल्हन के वकील बने हुए थे। दूसरी तरफ हमने अपना हक जताते हुए अपना सेहरा पढ़ने की जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी थी। बेग साहब की सारी जिंदगी बे इंतहा मेहनत से इबारत थी। वो टीवी के प्रोग्राम कसौटी के अलावा खसूसी दस्तावेजी फिल्में बनाते, स्क्रिप्ट लिखते और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। साथ ही सदर ज़ियाउल हक ने अपनी तकरीरें लिखने के लिए उन्हें मखसूस किया हुआ था, जो एक भारी जिम्मेदारी थी। मगर वो ये तमाम काम ऐसी खुशसलूबी से निभाते कि घरेलू जिंदगी और बेटियों से प्यार में कोई खलल ना आता। उनकी इन बेशबहा खिदमात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें आला तरीन सिविल एहसास तमगे हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। बेशतर टीवी एजाजात इसके अलावा थे। टीवी से रिटायरमेंट के बाद वो कराची मुंतकिल हो गए थे और वहां भी फिल्में बनाने में मसरूफ रहे और इसके लिए सिंध, चोलिस्तान और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाते और पाकिस्तान के मनाजिर को फिल्म बंद करते थे। इस अंतक मेहनत ने उन्हें बीमार कर दिया। जब हम आखिरी बार उनसे मिलने उनके क्लिफ्टन वाले घर में गए तो सलमा ने बताया कि बेग साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती। चंद रोज पहले उन्हें दिल की तकलीफ हुई है और अभी एक टेस्ट होना है, दुआ करो सब ठीक हो। मगर सब ठीक नहीं था। हम वापस अमरीका आ गए तो मालूम हुआ कि ये दिल की तकलीफ से भी बड़ी कैंसर की बीमारी थी और डॉक्टरों ने सिर्फ 6 महीने की मोहलत दी थी, सिर्फ 6 महीने। और ठीक 6 माह बाद 22 जून सन 2012 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल पर पूरे मुल्क की फजा सोगवार हो गई। अवाम की एक हर दिल अजीज शख्सियत उन्हें छोड़ गई। अखबारात में उनके इंतकाल की खबरें शाये हुई, उन पर मजमून लिखे गए। वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC समेत पाकिस्तान के हर चैनल ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया और मारूफ अखबार डॉन ने क्या खूब लिखा कि पाकिस्तान का पहला जीता जागता गूगल आज खामोश हो गया। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट की ताजा किस्तें सुनने के लिए आप इसे iTunes, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई ऐप पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।